Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अगर पहली सीढ़ी पर ही लड़खड़ा गए तो आगे की सीढ़ियों पर चढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। जितनी जितनी परिमार्जित इंद्रियां होंगी उतना पहले ग्रहण, जिसको फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा अंग्रेजी वालों ने एक मुहावरा बना रखा कि जो छाप पड़ेगी आपके, मोहर लगेगी आपके दिल पर, वो पहली जो मोहर एक बार लग गई ठीक तरह से तो वही काम करे। अगर मोहर ही धुंधली सी लग गई, मोहर ही अगर कंप्लीट नहीं लगी, कुछ आ गया कुछ नहीं आया, तो फिर आगे पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं। जितनी इंद्रियां परमार्जित होंगी, जितनी इंद्रियां पवित्र होंगी, जितनी इंद्रियां ठीक बात को देखने के लिए तैयार होंगी, उतना ही आपका मन ग्राहक होगा उस बात को, उतनी ही रिसेप्टिविटी बढ़ेगी मन की, क्योंकि बात तो कान के माध्यम से ही मन तक जानी। अगर कान हमारे पवित्र सुनने के अभ्यस्त है, पवित्र सुनने के अभ्यस्त का मतलब होता है कि कम से कम सुनना, वही सुनना जिसकी जरूरत, सारा दिन वैसे ही टीवी लगा के बैठे रहना, सारा दिन रेडियो सुनते रहना, कैसेट लगा के बैठे रहना, ये जो जो भी हम सुनते रहते हैं ये कभी भी कानों को सूक्ष्म होने ही नहीं देंगे। और अब तो उन सुनने की बात ही छोड़ दो, मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है आदमी को। कोई भी आदमी कमरे को झाड़ू दे रहा है, अंदर कमरा साफ कर रहा है, साथ में मोबाइल पर बात कर रहा है। ऐसे में बैठ के ये ऋषियों का चिंतन और कानों की पवित्रता और ये एक परंपरा को निभाने वाली बात है, मजबूरी है, क्योंकि ये हमारे शास्त्र हैं और इस वेश में हम आए हैं। हमारा ये एक ही धर्म है कि शास्त्रों को पढ़ो और पढ़ के जितना समझ में आए लोगों को सुनाओ, दूसरा कोई काम नहीं। इसलिए ये सुनाना एक किस्म की मजबूरी हो गई। पहले ये ऐसे नहीं सुनाते थे, पहले तो सुनने वाला ढूंढता था, वो पहुंचे सारे छोड़ के मोबाइल बमोबाइल तो फिर उससे बात करते थे। आज ये है कि चाहे मोबाइल भी आओ, साथ में टीवी भी लगाओ और भी आप डांस भी करते रहो, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, बोलते रहो। लेकिन सूक्ष्म तक जाने के लिए, क्योंकि स्वाय ओम के और कोई मंत्र ऐसा नहीं है, स्वाय ओंकार के और कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो आपको वहां ले जाए। दुनिया भर में खोज हुई है, बहुत खोज की लोगों ने, लेकिन अंत में आकर ओम पर ही टिके हैं। किसी ने उसको ओंकार कह लिया, किसी ने केवल ओम कहा, किसी ने आमीन कह के उसको लिया, किसी ने रहे ओम के इर्द गिर्द, अर्थात ध्वनि वही रही, आऊ और मां, साउंड वही रही, उस साउंड का प्रोनंसिएशन जरूर स्थानीय रहा, अपने अपने ढंग से। अब आ ऊ मां को पंजाबी बोलेगा तो और तरह से बोलेगा, गुजराती बोलेगा तो और तरह से बोलेगा, बंगाल वाला बोलेगा तो और तरह से बोलेगा। एक ही गीत को ये सब अलग अलग गाएंगे, क्योंकि वो स्थानीयता है, वो प्रोविंशियल, जहां पैदा हुए हैं वहां की क्लाइमेट, वहां के लोग, वहां की बनावट, वो हमारे प्रोनंसिएशन में भेद कर देती है। इसलिए उनमें भले ही भेद हो प्रोनंसिएशन में, लेकिन आधारभूत बात यही है कि साउंड वही है, आ ऊ और म। इसी को ही सुरति योग भी कहा गया। तंत्र के ग्रंथों में देखोगे तो इसको उदगीत योग बोलते हैं, लय योग भी इसी को बोलते हैं, स्वर योग भी इसी को बोलते हैं, नाद योग भी इसी को बोलते हैं, शब्द ब्रह्म भी इसी को बोलते हैं। वो ओम ही वो शब्द है जो ब्रह्म है, अर्थात ओम ही ब्रह्म को आपको और अपने आप को एक कर देगा, तीनों को इकट्ठा कर देता है। और साथ बाद में जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो उस अनुभूति में फिर कोई इन तीनों में से कोई भी नहीं बचता। जैसे समाधि की अवस्था में चले गए, जैसे निर्विकल्प समाधि में चले गए तो कौन बचा? ना आप है, ना संसार है, ना कोई कुछ है। वहां तो स्वाय रस के और कुछ है ही नहीं, और जहां रस ही रस है और कुछ है नहीं, तो वहां कौन किसको क्या सुनाएगा, कौन किसको कैसे देखेगा। ऐसी ऐसी श्रुतियां आई हमारे उपनिषदों में कि वहां पहुंचकर कौन किसको क्या सुनाए। जहां सब रस ही रस है, हर चीज रस है, रस का मतलब जहां सारे ही खिलौने खांड के बने हुए हैं, ये हाथी भी खांड का है, कुत्ता भी खांड का है, चूहा भी खांड, तो कौन मिठास की बात करे, सारे अपने आप में मीठे, कोई उसमें बात ही नहीं रहती। इसलिए वो स्थिति आ जाती है जिसमें उन्होंने कह दिया कि कौन वहां किसको देखता है, कौन किसको सुनाता है, वहां तो अद्वैत है, एकत्व है, नानत्व वहां रहा ही नहीं। तो कहां नहीं रहा नानत्व? जहां आप सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व अर्थात अहंकार को भी छोड़ दें, अहंकार से पार हो गए। हम इंद्रियों पर नियंत्रण लोग करते हैं, हठ योग से भी होता है कि किसी ने आंखें बंद कर की, गंधारी जैसों ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि देखना ही नहीं है। तो इंद्रियों को परिमार्जित करें, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त, चित्त तक पहुंचने के बाद फिर आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहता। ये अनुभव भी है, और इसी उपनिषद के माध्यम से इन कारिकाओं को देखते हुए जो लोग साधना में लगे, ये उनका स्वयं का अनुभव भी है कि जो ही बुद्धि से आगे चित्त तक पहुंचे तो चित्त तक पहुंचते पहुंचते फिर अपना नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि फिर वो जो परम चेतन है वो उसकी कशिश है, फिर वो अपनी तरफ आपको खींचना शुरू कर देता है। फिर हम इधर से पृथ्वी की कशिश खत्म हुई, इंद्रियों को पृथ्वी खींचती है, पृथ्वी के बाद जल भी है, अग्नि भी है, वायु है, फिर आकाश तत्व। ये इसी में ही देखो, ओम की जब आ उ मा की बात करोगे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात करोगे, तो इसी में ही स्थूल सूक्ष्म और कारण की बात आएगी कि ये वही है। और ये जो स्थूल सूक्ष्म और कारण है, यही ये पृथ्वी जल अग्नि पाताल सब इसी में ही आ जाएंगे। और ये मनोमय आदि जो पंचकोश गिनेंगे वो भी इसी में ही आ जाए। सप्त भूमिकाओं को जो आप लोग शुभ इच्छा सुविचारणा तनुमानसा आदि, वो इसी की ही व्याख्या। कोई भी एक चीज तो ऐसी नहीं है जो इससे बच जाए। इसीलिए पहले मंत्र में उन्होंने ये कही थी बात कि ओम इति एतद् अक्षरम, ये ही एक अक्षर ऐसा है जो सब कुछ है। कल एक प्रथम मंत्र का उच्चारण किया था जिसमें आपने ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम ये बात कही। तो ये जो कुछ भी मैंने आज आपसे कहा या कह रहा हूं, ये यही बतलाने के लिए है कि ये ओम ही वो ये अक्षर है जो इदम सर्वम सब कुछ। सब कुछ का मतलब स्थूल से लेके सूक्ष्म तक, और फिर सूक्ष्म को भी जब आप छोड़ देंगे तो फिर चेतन ही चेतन है। फिर आपने छोड़ना कुछ नहीं, फिर तो चेतन ने आपको पकड़ लिया, फिर चेतन का आप में आवेश, फिर आपने पकड़ा पकड़ाया कुछ नहीं है, फिर आप चेतन की गर्दाब में आ गए। जैसे कोई चुंबक के एरिया में आप पहुंचते ही वो चुंबक की कशिश फिर आपको खींच लेती है, फिर वो परम चेतन आप में तब पवित्रता इतनी हो गई, सूक्ष्मता इतनी हो गई, आप में संवेदनशीलता इतनी बढ़ गई कि तब फिर वो परम संवेदन परम चेतन वो अपने आप ही आपको अपनी ओर खींच लेता है। तो मंडूक उपनिषद जिसमें ओम का ही ये शुरू ही यहां से हुआ है कि ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्याना, ये जो ओम है ये अक्षर है, इसका कभी क्षय नहीं होता, और ये ही सब कुछ है, उसकी ही यहां हम उपव्याख्या, उप कहते हैं नजदीक को, जैसे उप प्रधान जो एक तो प्रधान हो जाता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष के बिल्कुल पास बैठने वाला उपाध्यक्ष, तो उप का मतलब होता है पास। इसी से ही उपनिषद शब्द भी बनता है, उप का मतलब पास, नी मैंने दृढ़ता से, सद मैंने बैठना, तो बहुत दृढ़ता से नजदीक बैठना, अपने नजदीक बैठना, ये इसका असली अर्थ है कि सबके नजदीक तो बैठ के हमने देख ही लिया, हर एक के पास बैठ के देख लिया, कर लिया जो कुछ भी रहा, संसार की चीजों के पास देख लिया, रिश्तेदारों के पास देख लिया, बेटे बेटियों को भी देख लिया, अब जरा थोड़ा अपने नजदीक होकर बैठ जाए कि मैं क्या हूं। अर्थात हमने सब कुछ जान लिया कि पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, चंद्रमा पर क्या है, मंगल ग्रह पर क्या है, समुद्र में मछलियां कैसे सांस लेती हैं, ये सब तो जान लिया, लेकिन मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, यही जानना बाकी रह गया। और जब तक हम दुनिया भर को जान ले, स्वयं को नहीं जानते, शास्त्र कहते हैं तब तक आपने कुछ भी नहीं जाना। तो उपनिषद का अर्थ भी यही होता है, दृढ़ता पूर्वक अपने नजदीक बैठना। उपवास का अर्थ भी यही होता है। आज देखो एक चांस है कि आज उपवास भी है एकादशी का, उपनिषद आप कर ही रहे हो और उपव्याख्या इसकी यहां पर सुन लो। तो उप का मतलब होता है नजदीक, वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, विशिष्ट, स्पेशलाइजेशन, व्याख्या का मतलब एक्सप्लेन करना, पास बैठकर विशेष रूप से उसकी व्याख्या करें, किसकी, ओम की। ओम क्या है, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता। अब ओम को कोई शब्द ना समझना, ओम उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। ओम इति एतद् अक्षरम्, ओम वो है जो अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं है। एक बात वैसे ही आप ध्यान में रख लो कि आवाज, जिसको आवाज, ध्वनि, साउंड, इसका कभी नाश नहीं होता। आप चुपचाप बैठो, अपने कानों में उंगलियां लेके बैठो, आपको फिर भी एक आवाज सुनाई देगी। यहां दो मिनट के लिए सारे चुप कर जाओ, एक अजीब सी आवाज जैसे कोई सीटी बजा रहा है या जैसे कोई बोल रहे हैं, छोटे छोटे झींगुर बोलते हैं, आजकल पहाड़ों में जंगलों में खूब पानी बरसने से पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें तरह तरह के वो हैं जिनको पतंगे कह लो, तो वो बैठे गुंजार करते हैं, एक गूंज सी आती रहती है, तो एक गुंजार, एक गूंज, एक हम जैसा, जैसे ऐसा करते हैं, वो आपको हर समय सुनाई देगा। जितना जितना सूक्ष्म आप होते चले जाएंगे, आप ये देखोगे कि दुनिया में कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां आवाज ना। सब कुछ मिट सकता है लेकिन आवाज मिट नहीं सकती। ये जो कुछ भी हम यहां बैठे बोल रहा हूं मैं, ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ये सदियों तक नहीं खत्म होगा, ये बना रहता है। इसीलिए जहां पर यहां बैठ के कोई बोल रहा है, टीवी पर अगर बोला जाएगा तो वो टीवी वाले उसको दुनिया के किसी कोने में भी सुन लेंगे। जो टीवी पे बैठ के बोलते हैं और वो दूसरी जगह सुनाई देता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि जो आप बोल रहे हो ये खत्म हो गया। ये इसको भी अगर उन्हीं यंत्रों के माध्यम से पकड़े तो ये सब जगह प्रसारित होगा। इसका अर्थ है जो आप बोलते हो ये हवा में, ये खला में हमेशा रहेगा। इसलिए बोलते समय ये जो भद्रम आदि के आप श्लोक पढ़ते हो कि मैं ये सुनूं, मैं ऐसा बोलूं, मैं ऐसा, वो इसीलिए क्योंकि इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में है। इसीलिए हर रोज दोहरा लेते हैं कि परम सत्य यही है कि कोई भी चीज किसी से भिन्न नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हो। इसलिए कभी किसी की मौत नहीं होती, कभी किसी का जन्म भी नहीं होता, वो तो अलगाव में होता है। इसमें जहां सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, कभी पृथ्वी पानी बन गई, पानी अग्नि बन गया, अग्नि वो बन गया कभी, तो ये एक लीला सी चल रही है बीच में। लेकिन इस लीला को चलाने वाली रिदम जो लयबद्धता, वो लयबद्धता साउंड में है, आवाज में। तो ओम भी एक पर्टिकुलर साउंड, आप ऐसा कहें। सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी जिसका नाश ना हो उसको अक्षर कहा जाता है। तो ओम एक ध्वनि है, उस ध्वनि को समझने के लिए आ ऊ मा ऐसे करके ऋषियों ने उसको समझ कर उस तक पहुंचे हम कैसे, तो ये ऋषियों की खोज कह लो आप। जैसे वैज्ञानिक खोज करते हैं स्थूल चीजों को पकड़कर, उनको तोड़ तोड़ कर देखते हैं कि ये क्या है, ऋषियों ने इस अमर अमर का मतलब जिसका नाश नहीं, अगर आप उसको पकड़ लोगे जिसका नाश नहीं और किसी तरह से उससे आपकी लयबद्धता हो गई और आपको ये पता लग जाए कि वो तो मेरे ही पास है, मेरे ही अंदर है, जब उसका नाश नहीं तो जो मैं उसको अपने रखने वाला हूं मेरा नाश कहां हो जाएगा। मैं तो उससे थोड़ा सा दो रत्ती ज्यादा ही हुआ। अगर कोई चीज मेरे ही अंदर है तो मेरे अंदर का मतलब ये है कि मैं उससे बड़ा हूं, वो मेरे है। फिर ये एक दूसरा चिंतन है इसी का ही, जिसको अमात्र कहते हैं, कि स्थूल शरीर का परित्याग कर सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और फिर कारणातीत वहां पहुंच जाना। ये हमें ओम सिखलाएगा कि इसका चिंतन कैसे करना है। तो ये जो सूक्ष्म ती सूक्ष्म ध्वनि की बात आई, वही अक्षर है, वो उसका कभी क्षय नहीं होगा और उसमें लयबद्धता है, रिदम है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति प्यार में है, प्रेम में है और किसी चीज में नहीं। इसलिए इस सिद्धांत में ये बात आएगी कि स्वाय प्रेम के और दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो क्रोध है वो भी प्रेम का ही एक रूप है। भले ही इसको नेगेटिव कहो, उसको पॉजिटिव कहो, उसको ये कहो, एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, ये बात भी आप कहो, लेकिन कहो कुछ भी, स्वाय प्रेम के कोई दूसरी चीज है नहीं। अगर प्रेम ना हो कपड़े से तो आप कपड़ा भी ना पहनो। अगर कोई चीज एक कदम भी ऐसा नहीं है जो बिना प्रेम के कोई चल सके, लयबद्धता, रिदम, प्रेम, नाद ना, इन सब को करके ओम कह लो, उसका स्थूल रूप है, क्योंकि यहां से शुरू होगा ये जो यात्रा है हमारी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। तो ये जो मंडोक्य उपनिषद है, इसकी दूसरी एक विशेषता आप ये भी समझ लें कि मंडोक मेंढक को कहते हैं, फ्रॉग। मेंढक एक पानी में रहने वाला छोटा सा जानवर, जो देखो मेंढक की विशेषता होती है कि ये साल में 9 महीने 10 महीने पृथ्वी में घुसा रहता है, खत्म हो जाता है, जैसे है ही नहीं। यहां रहते हुए तो पता नहीं कभी किसी को मेंढक देखने का मौका मिला हो या ना मिला हो, हो सकता है जू में जाके ही कभी देखा हो, लेकिन गांव गांव में रहने वाले जिनकी बैकग्राउंड ऐसी रही वो इनको खूब जानते हैं, गांवों के छोटे छोटे जौहड़ों में उसको पकड़ लेना करना। लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वो साल में लगभग 9-10 महीने कहीं नजर नहीं आता, पृथ्वी में पड़ा रह जाता है और वैसा ही वो पृथ्वी रूप हो जाता। जो ही बरसात होती है, पहली वर्षा से ही वो टर्राना शुरू करता है, मेंढक टर्राते, मेंढकों का बोलना शुरू हो गया, वो जीवन में आ जाता है। और मेंढक के टर्राने का अर्थ होता है कि अब वर्षा होगी, गांवों के लोगों का तो बस भविष्यवाणियां ही यही करते हैं मेंढे। जैसा जैसा उनका टर्राना उतना उतना किसान अपनी खेती में कि अब वर्षा बहुत होगी या वर्षा अच्छी होगी इन्हीं से ही अंदाजा लगा लेते हैं। और वो अंदाजे कभी गलत नहीं हुए, ठीक हुए। तो बरसात में वो बोलना शुरू करता है, खूब टर्राता है, चल के करेगा। दूसरी उसमें विशेष बात ये होती है कि वो छलांग लगाता, कूदता है, चलता नहीं है जैसे आम बाकी जानवर चलते हैं, वो छोटी छोटी छलांगें लगाता है, यहां यहां से छलांग लगाई, वहां वहां से छलांग लगाई, वहां। तो वो छलांग लगाता है। ऐसे ही ये जो मांडुक्य उपनिषद है ये उस समय का है जब ऋषि जंगलों में रहा करते थे, कुटियां बना के रहते थे, वो 9-10 महीने शहरों में नजर नहीं आते थे, अपनी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, मंत्रों के दृष्टा हैं ऋषि, जिन्होंने पढ़ना हो वहां चले गए, गुरुकुल बने हुए थे, हर ऋषि के पास उसके शिष्य हैं, गृहस्थ लोग, राजा लोग, संपन्न लोग, धनवान लोग जंगलों में जाते थे और ऋषियों की जो भी कोई थोड़ी बहुत जरूरतें होती थी सामान दे आते थे, खाना पीना ये, लेकिन वहां और कोई जाता नहीं था, जो गए दो दिन एक दिन रह के चले गए। लेकिन बरसात में चतुर्मास का एक प्रथा थी, वो ऋषि वहां से निकल के ये 4 महीने बरसात के, गुरु पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर और वो जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस तक ये फिर शहरों में आ जाते थे ऋषि। तो जैसे वो मेंढक आवाज देते थे ना कि अब बरसात होने वाली है, तो शहरों में आके फिर वो नारायण हरि की आवाज लगाते थे कि भाई अब जो अनुभव है उनका उसको सुनाने के लिए लोग प्रबंध करते थे, किसी एक हाल ले लिया, वो कर दिया, तो वहां 4 महीने का सत्संग होता, वहीं बैठ के ये बातें होती थी। इसलिए भी इस समझ लो इसको मांडुक्य उपनिषद इसका नाम रखा गया। दूसरी इस उपनिषद की विशेषता ये है कि ये आ उ और म, बस ये छलांगे समझ लो तीन आप मेंढक की तरह, इसमें एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ना, इसमें से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अर्थात हम जागते हैं, सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, लेकिन ये तीनों करते हुए भी कुछ हम में ऐसा है जो ना जागता है, ना सोता है, ना स्वप्न देखता, क्योंकि वो अगर बीच में से निकल जाए तो फिर हम ना जागेंगे, ना सोएंगे, ना देखेंगे। तो जागने वाला, सोने वाला, स्वप्न देखने वाला अंतःकरण है, और जिसके आधार पर अंतःकरण ये सारे खेल कर रहा है उसको चेतन तत्व कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति। आत्मा अपने आप में इनमें से न सोता है, न जागता है, न करता है, वो तो इनका प्रकाशिक है, अर्थात उसकी सत्ता से ये सारा खेल हो रहा है, ये ड्रेस है आत्मा का। जैसे आप अभी मतलब ये कपड़े पहन के आए हो, रात को नाइट सूट पहन लोगे और बाथरूम में जाके दूसरे कपड़े तौलिया सा लपेट लो, आप वैसे ही रहोगे, कपड़े बदलते रहे। तो आत्मा के कपड़े हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा ने ही मतलब वो उसका एक कह लो, जैसे हम कपड़े बदल के खुश होते हैं कि अब ये पहन लो, अब ये पहन लो, अपने आप वैसे के वैसे ही रहते हैं, ऐसा ही थोड़ा बहुत इससे मिलती जुलती बात कह लो, क्योंकि आत्मा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिस जैसा कोई और है, तो जिस जैसा कोई और है नहीं, उसके लिए कोई उदाहरण भी तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस जैसा कुछ और हो तो हम कहें कि यह ऐसा। ये भी जो हम कहते हैं ना कि कपड़े हैं, ऐसा है वैसा, ये भी इसको कहते हैं हाथ पैर मारना, कि हाथ पैर मार के कुछ समझाने के कि उसके निकट पहुंच जाएं, ये कोशिश कर रहे हैं, वस्तुतः उसके कपड़े भी कोई नहीं। क्योंकि देखो एक बात, अगर कोई सावधान रहे तो अगर कपड़े भी हों और आत्मा भी हों तो द्वैत आ जाए। इसका मतलब कपड़े कुछ और चीज है, आत्मा कुछ और चीज है, और कहते हम ये हैं कि स्वाय उसके और कुछ है ही नहीं। जिस दिन कपड़े भी वही है और सोने वाला भी वही है, जागने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही। कई बार बोलते हुए लोग कहते हैं वो कालातीत है, इसका मतलब है काल कुछ और चीज है और वो उससे परे है। दो चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी तब कालातीत शब्द बनेगा। इसलिए कालातीत आदि शब्द के वो अर्थ नहीं है जो आम तौर पर आप समझते हो या आम आदमी समझता है या समझाता है। आम आदमी कहता है वो काल से परे। काल से परे का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि काल भी कोई चीज है और उससे परे कोई और दूसरा बैठा हुआ। तो द्वैत तो यूं ही आ गया, दो चीजें तो हो ही गई, एक काल और एक काल से परे वाला। लेकिन ये सिद्धांत नहीं है, तत्व तो एक ही है, यानी काल भी वही है। उस महान तत्व में काल कल्पित है, उस परम चेतन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति कल्पित है, वास्तविक नहीं है। कल्पित भी एक पारिभाषिक शब्द है। को ये उपनिषद समझने समझाने में कठिन है, फिर भी इसको लेके हम बैठे, क्योंकि आज के युग में इसका कोई वो नहीं रहा प्रचार। अब कथाओं का प्रचार है, क्योंकि कथा सुनाओ, कोई ये करो, कोई वो करो। तो इसको जानबूझ के यहां ये सोचा गया कि क्योंकि आप सब, एक लंबी परंपरा है आपकी सुनने की, वेदांत सुनते रहे हैं, तो इस बहाने से हम ऐसी उपनिषद को लें जो सूक्ष्म की ओर ले जाती है। और अगर हम स्वयं इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का ये क्रम बन जाएगा। नहीं भी करेंगे तो कम से कम ऋषियों के इस महान चिंतन तक तो हम पहुंचेंगे ही कि उन्होंने तीन, देखो बाकी जितने भी साधन हैं, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उनको कहते हैं सीढ़ियां चढ़ना। वो सीढ़ियां हैं कि पहले आप मंत्र जाप करो, फिर उपासना करो, उपासना से फिर आप ध्यान में आओगे, ध्यान में फिर ऐसे आओगे, फिर वैसे होगा। सीढ़ियां चढ़ना भी वही बात है और छलांग लगाना भी वही बात है। हम एक एक सीढ़ी चढ़ते रहे, ये एक ही बार में एक ने छलांग लगाई, चौथी सीढ़ी पर पहुंच गया। तो ये मांडूक्य में ये तीन अवस्थाएं जो है आपकी, जो रोज जिससे हमारा अनुभव बढ़ता है, तो ये एक किस्म की छलांगे हैं। इन्हीं की व्याख्या हम करेंगे कल से कि एक एक छलांग को लगाते हुए एकदम तुरीय में पहुंच जाए। और सीढ़ियां चढ़ना वो भक्ति मार्ग, कि अब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर भगवान का श्रृंगार। और देखो ऐसे संयोग की बात कहो, इन मैं तो इन्हें बच्चे ही कहता हूं, ये गिरीश जी हैं, प्रकाश हैं, ये इनकी वजह से ही शाम को 11 तारीख से मीरा पर कुछ सत्संग रखेंगे। तो मीरा सीढ़ियां चढ़ना है और मांडूक के छलांग लगाना है, ये दोनों ही बातें इन दिनों में आप अनुभव करेंगे अपना अपने चिंतन में। और फिर जिसका मन हो, जैसे कोई छलांग लगा ले तब ठीक है, सीढ़ियां चढ़ ले तब ठीक है, और नहीं तो ना से ही फिर जो लगा रहे हैं उनको ही देखो, जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उनको देखें। ओ।